इस्लाम में बालाधिकार।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विश्व और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्रों में बाल अधिकारों की समीक्षा करेंगे। बच्चे समाज की एक इकाई हैं और उनके बचपने को मानव जीवन का बहुत संवेदनशील समय समझा जाता है। इस कारण हमने बच्चों के अधिकारों की अलग से समीक्षा की है और उनके अधिकारों के विषय को अलग से पेश किया है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि हमने आरंभ में कहा कि बच्चे भी इंसान हैं, जिसकी वजह से इनके भी कुछ अधिकार हैं। इस आधार पर दुनिया में इस समय बड़े पैमाने पर बच्चों के अधिकारों की बात की जाती है।
दुनिया में बच्चों के अधिकारों के अतीत की समीक्षा करने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि आरंभिक शताब्दियों में बच्चों को महिलाओं की तरह बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। दूसरे शब्दों में, बच्चों के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाता था। बड़ी उम्र के लोग बच्चों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते थे और कुछ अवसरों पर उनकी हत्या तक कर देते थे।
जिस तरह अतीत में बच्चों के साथ हिंसात्मक व्यवहार हुए हैं, उसी तरह अतीत में उनके अधिकारों को जानने की प्रक्रिया को भी कठिन चरणों से गुजरना पड़ा है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से हम ऐसे समय और बदलाव तक पहुंचते हैं जिसे बच्चों के अधिकारों की पहचान का काल कहा जा सकता है। लियोड डिमास ने बच्चों का इतिहास नाम की जो किताब लिखी है, उसके आधार पर हम 6 दौर में बच्चों के अधिकारों की समीक्षा करेंगे।
पहला दौर बच्चों की हत्या का दौर है। ये वो दौर है जब बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था और बच्चों के साथ ये रवैया 4वीं शताब्दी तक जारी था। बच्चों का इतिहास नामक किताब के लेखक का मानना है कि बच्चों के संबंध में बड़ी उम्र के लोगों में जो सोच पाई जाती थी वो ये थी कि बच्चों से कोई लाभ नहीं है और उन्हें पालना एवं बड़ा करना पड़ता है, जबकि बड़ी उम्र के लोगों के साथ ऐसा नहीं करना पड़ता।
एक मनोवैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हुए लिखता है, वास्तव में गर्भपात करना और बच्चों की हत्या कर देना समाज को सुरक्षित और उसे बाकी रखने का एक रास्ता था। अलबत्ता इसमें कुछ अपवाद भी था। ये उस वक्त था जब महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बच्चों की मौत हो जाती थी।
प्रतीत ये होता है कि इस प्रकार की सोच का कारण ये था कि लोग बच्चों को धन संपत्ति की तरह अपना माल समझते थे और उनके साथ हर प्रकार के व्यवहार को अपना अधिकार समझते थे। प्राचीन रोम में बाप की सोच शक्ति का बोलबाला था और ये सोच बाप को यह अधिकार देती थी कि वो अपने बच्चों के साथ दासों जैसा व्यवहार कर सकता है। इस सोच के अनुसार बाप उन्हें जिंदगी और मौत का अधिकार देता था और इस अधिकार को वो वापस भी ले सकता था।
इसी अधिकार के बहाने लोग बच्चों की हत्या का औचित्य भी दर्शाते थे। अरस्तु का मानना था कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह अपने बाप की संपत्ति है। अलबत्ता अफलातून समेत कुछ यूनानियों की आस्था के अनुसार जो महिलाएं 40 साल से अधिक की हो चुकी हों और जिन मर्दों की उम्र 55 साल से अधिक हो चुकी हो, उन्हें बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं होता था। उसने सरकार से कह रखा था कि अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे गर्भपात करना होगा या जिस तरह से भी संभव हो जन्म ले चुके बच्चे को मारना होगा।
बच्चों का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की हत्या करना कानूनी था। इस तरह की एक औरत को एक से अधिक बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं था, और अगर दूसरा बच्चा पैदा हो गया तो हर हालत में उसकी हत्या करना होता था। जो बच्चे जुड़वा पैदा होते थे उनका अंजाम अधिक बुरा होता था, उनमें से किसी एक को या दोनों को या सबको मार दिया जाता था। वे इसी प्रकार लिखते हैं कि कुछ दूसरे क्षेत्रों में उन बच्चों को भी मार दिया जाता था जो अपंग पैदा होते थे, क्योंकि उनकी अधिक या विशेष देखभाल करनी पड़ती थी। जो बच्चे अपंग पैदा होते थे, कभी उनकी माओं से कहा जाता था कि वे अपने अपंग बच्चों के शरीर के कुछ मांस खाएं, ताकि उनके गर्भ में रहने के कारण जो शक्ति कम हो गई है उसकी भरपाई हो सके।
बच्चों को हीन दृष्टि से देखना उनकी स्थिति का दूसरा काल है। चौथी से चौदहवीं शताब्दी तक लोग आग्रह करते थे कि बच्चा एक अपवित्र अस्तित्व है, और इस अपवित्र अस्तित्व से मुकाबले का एकमात्र मार्ग उसे शारीरिक यातना देना व प्रताड़ित करना है। इस गलत सोच की वजह यह थी कि लोग उस समय बच्चों और बच्चों की वास्तविकता को नहीं समझते थे, और इसी कारण लोग बच्चों से उन कार्यों की अपेक्षा रखते थे जो उनकी क्षमता से बाहर होते थे, और बच्चों को हर प्रकार का दंड देने को कानूनी एवं वैध चीज़ समझते थे। इस आधार पर अबोध बच्चों से वो काम कराना सामान्य बात थी जो उनकी क्षमता से बाहर होते थे। वास्तव में बच्चे कमज़ोर हालत में थे और वे बड़ों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए उन्हें बहुत कठिन हालात का सामना करना और विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहन करना पड़ता था।
तीसरा आश्चर्य व असमंजस का दौर था। ये दौर 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जारी रहा। ये नई विचारधारा के अस्तित्व में आने का दौर था, और ये दौर 14वीं शताब्दी से पहले वाले दौर से विरोधाभास रखता था। अलबत्ता इस दौर का दूसरे दौर पर, यानी बच्चों को यातना देने के दौर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बच्चों को यातना देना काफ़ी समय तक जारी रहा, और उस समय भी बच्चों को मौत जैसी कड़ी सजा का सामना था।
बच्चों का इतिहास नामक किताब के लेखक लियोड डिमास के अनुसार, इस दौर में जो ये धारणा पाई जाती थी कि बच्चे अपवित्र हैं, उस पर गंभीर रूप से प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इसी प्रकार इस काल में कुछ ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं जिनमें किसी सीमा तक उस विचारधारा को रद्द किया गया जिनमें बच्चों को अपवित्र अस्तित्व की संज्ञा दी गई थी। इन पत्रिकाओं में जो बातें प्रकाशित की गईं उनसे किसी सीमा तक लोगों की उस सोच में बदलाव एवं परिवर्तन की हालत उत्पन्न हो गई, जिसके अनुसार बच्चों को अपवित्र प्राणी समझा जाता था, और यही चीज़ शायद इस दौर के नामकरण का कारण बनी, और इसी वजह से इस दौर का नाम परिवर्तन रख दिया गया, क्योंकि एक ओर पूरी तरह वो सोच समाप्त नहीं हुई थी जिसमें बच्चों को अपवित्र प्राणी समझा जाता था, और दूसरी ओर वो विचारधारा पूरी तरह व्याप्त नहीं हुई थी और सब लोग उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बच्चों को अपवित्र समझना कल्पना से अधिक कुछ और नहीं है।
चौथे दौर का नाम सरलता रखा गया है। ये वो दौर है जब बच्चों के साथ कड़ाई के बजाय सरलता का बर्ताव किया जाता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी वो दौर है जिसमें बच्चों के साथ कड़ाई से व्यवहार करने की सोच पर विराम लग गया, और बच्चों के माता पिता ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि बच्चे बुरे प्राणी नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिन पर अगर सही तरह से ध्यान दिया जाए तो भविष्य में समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं। जब से बच्चों के बारे में इस प्रकार की सोच प्रचलित हो गई और हिंसा के बजाय उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाने लगा, तो माता पिता और बच्चों के बीच जो गहरी दूरी थी वो समाप्त हो गई।
लियोड डिमास के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान जो रिपोर्टें इस बात की सूचक हैं कि इस दौरान बच्चों की मृत्यु दर कम रही है, वे इसी सोच का परिणाम हैं। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता समाज और परिवार में बच्चों के संबंध में पाई जाने वाली सोच का पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना है। البتہ بچوں کے بارے میں پائی جانے والی سوچ میں پریورتن بہت اچھی و پربھاوی چیز ہے، پرنتو پرتیت یہ ہو رہا ہے کہ اس کے ویوہارک ہونے کا ارتھ یہ نہیں ہے کہ سماج کے لوگوں کے مدھیے بچوں کے سمبندھ میں جو ہنسا ایوم کٹھور برتاؤ پایا جاتا تھا وہ پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہے، کیونکہ آج بھی آدھونکتم طریقے سے بچوں کے ادھیکاروں کا ہنن ہوتا ہے۔
آج کی مشینی دنیا میں پریوار کے آدھاروں کے کمزور ہونے، ساماجک سمبندھوں کے جٹل ہونے، ورگ بھید اور کیول لابھوں کو درشٹی میں رکھنے کے کارن آج بھی بچے نئی دنیا کے ہتوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آج کی دنیا میں بچوں کے ساتھ ویوہار بھی پریورتت ہو گیا ہے۔ بچوں کا یون شوشن، آرتھک لابھ کے لیے ان کا دروپیوگ، ان کے ورودھ ہنسا، ان کے ساتھ بھید بھاؤ اور یدھوں آدی کے کارن ان کا بے گھر ہو جانا ان کے ادھیکاروں کے ہنن کے کچھ نمونے ہیں۔ اسی پرکار انٹرنیٹ کے غلط پریوگ سے وناشکاری و اپرادھی تتووں کے لیے یہ اوسر اپلبدھ ہو گیا ہے کہ وہ بچوں کا یون شوشن بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔